प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 28 मार्च 2017 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के लाइफ मैनेजमेंट के लिए मैंने बहुत ही ताजा विषय चुना है। ताजा इस मायने में कि कल ही मुझे आप में से किसी मेरे प्रिय श्रोता ने यह विषय सुझाया और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस विषय को लेने में देरी नहीं की जानी चाहिए। मित्रों, यह जो विषय है उस विषय का शीर्षक है संस्कार। उन्होंने संस्कार के बारे में जानना चाहा है कि संस्कार क्या होते हैं, क्या ये जन्मजात होते हैं, क्या इन्हें बदला नहीं जा सकता। इस तरह की कुछ क्वेरीज उन्होंने की हैं। सबसे पहले तो मैं यह प्रश्न पूछने वाले, या यूं कह लीजिए कि ज्यादा अच्छा शब्द होगा, यह जिज्ञासा व्यक्त करने वाले अपने नौजवान साथी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद किस लिए? मित्रों, धन्यवाद इसलिए कि अब हम जिस एज में आ गए हैं, सो कॉल्ड डेवलपमेंट के जिस चरण पर पहुंच गए हैं, वहां संस्कार जैसे शब्द अगर कोई युवा उच्चारित करे या यूं कह लीजिए कि उसके बारे में पूछे, तो सच में मन में कहीं ना कहीं एक झुनझुनी से होने लगती है कि नहीं, हरापन अभी बाकी है, पेड़ सूखा नहीं है। मैं इसी संदर्भ में आपको एक छोटी सी घटना बताना चाहूंगा। मित्रों, आज नव वर्ष है, जो एक हमारे अपने एक सिस्टम के तहत, अपनारी अपनी परंपरा के तहत का नव वर्ष है। अदरवाइज तो हम 1 जनवरी को मानते हैं, तो सुबह से मेरे व्हाट्सएप पर नव वर्ष की शुभकामनाएं आ रही हैं, तो मैं भी आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और आप सबकी शुभकामनाओं के बदले आप सबके प्रति धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। उसमें मेरे एक स्टूडेंट ने एक जिज्ञासा व्यक्त की और उन्होंने लिखा, व्हाट्सएप पर ही उनका मैसेज था कि सर, मैंने कई लोगों को नए वर्ष की शुभकामनाएं भेजी, तो कुछ लोगों ने तो उसके बदले में एक जो हंसी का जो एक चिन्ह होता है आप लोगों के व्हाट्सएप पर, वो मुझे भेज दिया। कुछ लोगों ने ये पूछा कि अभी कैसा नया वर्ष। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत से लोगों को भेजा और उसमें केवल 2-3 लोग ही समझ पाए कि आज किस तरह का नया वर्ष है। तो यह उनकी एक शिकायत जैसी बात थी जो जायज थी। मित्रों, मुझे फिर यह लगता है कि क्या सच में अगर मैं यह आज की पीढ़ी से शिकायत करूं कि उन्हें संस्कार के बारे में नहीं मालूम है, उन्हें अभी जो नया वर्ष शुरू हुआ है इसके बारे में नहीं मालूम है, तो क्या सच में मेरी शिकायत जायज है? मुझे लगता है कि शायद जायज नहीं है। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं कि उन्हें जानना नहीं चाहिए। जायज इस मायने में है या नहीं है, इसका मूल्यांकन हमें करना चाहिए कि हमने उनको कितना बताया है। बताने वाले तो हम हैं ना, जो हम एक उम्र के दौर में पहुंच गए हैं और नई पीढ़ी को इन सब चीजों के बारे में बताना जो हमारी एक जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है, हमने अपने दायित्व को कितना निभाया है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, उस एजुकेशन सिस्टम में 1 जनवरी इज द न्यू ईयर, तो वो उसे जानते हैं। वो जानते नहीं चैत बैसाख जेठ क्या होता है, उनको तो ये मालूम है कि हाँ 8 मार्च को होली हो गई, 13 मार्च को होली हो गई। उनको ये नहीं मालूम है कि फागुन में होली होती है, उनको नहीं मालूम है कि सावन का महीना क्या होता है। अब गाने में भी सावन गायब हो गए हैं, 70-80 तक के गानों में सावन होता था, अब वहां से भी गायब है, तो अब ये कहां से जानेंगे? तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उन्हें इसके बारे में जानकारी दें, समझाएं और अच्छे तरीके से समझाएं, लॉजिकल तरीके से समझाएं। क्योंकि अगर हम उन्हें केवल ये समझाएंगे कि नहीं, ये हमारी परंपरा है और ये हमारे संस्कार हैं और तुम्हें ये जानना ही चाहिए, तो वो उसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आज का जो माइंड है वो बेसिकली पहले की तुलना में काफी लॉजिकल माइंड है और ये होना एक अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये डेवलपमेंट का साइन है। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है मित्रों, अगर हमारे अपनी जमीन पर हो, यानी कि हमारी जो अपनी फिलॉसफी रही है, हमारे जो अपनी परंपराएं, जो हमारे अपने संस्कार, रीति रिवाज, हमारी सोच, अगर उस पर हो, तो वो वास्तविक डेवलपमेंट होता है, रसपूर्ण डेवलपमेंट होता है। नहीं तो वो सारा का सारा डेवलपमेंट, ये कह लीजिए कि जैसे हम कॉन्क्रीट के जंगल खड़े कर देते हैं ना, कुछ उस तरह का डेवलपमेंट हो जाता है, जहां डेवलप तो दिखाई दे रहा है लेकिन मन नहीं है, उसमें रस नहीं है, एक निचड़ा हुआ सा। तो फिर जब रस ही नहीं है तो फ्रेंड्स, फिर जिंदगी भी क्या है? जिंदगी तो रस का नाम है और हमारे यहां तो ईश्वर के आनंद को ब्रह्मानंद और रसानुभूति कहा गया है। रस की जब हम अनुभूति करते हैं तो वही ईश्वर की अनुभूति है। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में हमें बहुत ही सोच समझकर अपना निष्कर्ष निकालना चाहिए और हम सब जो उम्र के एक दौर में पहुंच गए हैं अपने दायित्वों को निभाने की कोशिश भी करनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब मैं संस्कार पर आता हूं कि ये संस्कार क्या है। देखिए, बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है। डिबेटेबल इस बारे में नहीं कि होता है या नहीं होता है, डिबेटेबल इस मायने में कि क्या होता है। और सच पूछिए तो ये जो शब्द है संस्कार, मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी फिलॉसफी में ये शब्द है, भारतीय दर्शन में ये शब्द है। संस्कार, चित्त शब्द भी आपको दुनिया के किसी फिलॉसफी में नहीं मिलेगा, साइकोलॉजी में नहीं मिलेगा, ये भारतीय दर्शन में मिलता है। और चित्त पर तो जैन दर्शन ने जितनी बातें की हैं अद्भुत तरीके से, बहुत ही गंभीरतापूर्वक उस पर उसने विचार किया। उसने चित्त को अलग माना है, मन को अलग माना है, हृदय बुद्धि ये सब तो अलग हैं ही, और जो संस्कार होते हैं वो कहीं ना कहीं चित्त में होते हैं। तो मैं उस परिभाषा में तो नहीं जाऊंगा मित्रों, वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। यहां मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, जो संस्कार है वो दो मूल रूप में है जो हम इस्तेमाल करते हैं। मैं बिल्कुल व्यावहारिक बात पर आ रहा हूं, और जो मैं समझता हूं कि मेरे जो प्रिय श्रोता ने जो प्रश्न खड़ा किया है वो उसी व्यावहारिकता से ही जुड़ा हुआ है। एक तो हम बार बार बात बात में ये कहते रहते हैं कि आजकल के लोगों की ये संस्कार हो गए हैं, या देखो वो कितने अच्छे संस्कार का लड़का है लड़की है, ये बातें हम अक्सर करते हैं, या वो कितना कुसंस्कारी है, दोनों ही बातें हैं। दूसरा जो हम संस्कार शब्द का प्रयोग करते हैं मित्रों, वो कुछ परंपराओं और रीति रिवाजों के रूप में करते हैं। जैसे नामकरण संस्कार, बच्चा पैदा हुआ है अब उसका नाम रखा जाना है, तो उस समय की जो विधि विधान है, उस समय की जो परंपराएं हैं, उनको हम कहते हैं ये क्या हो रहा है, ये नामकरण संस्कार हो रहा है, ये विवाह संस्कार हो रहा है, विवाह की परंपरा को विवाह संस्कार, मृत्यु की परंपरा को अंतिम संस्कार। तो संस्कार वहां आकर के एक प्रकार के रीति रिवाज और परंपरा या प्रणाली का रूप ले लेता है, एक सिस्टम बन जाता है कि आप ना बच्चे का नाम रखना चाह रहे हैं तो किस तरीके से रखेंगे। इसके दो भिन्न भिन्न अर्थ हैं। तो जो पहला अर्थ है मित्रों, वही मेरी समझ से जो पूछने वाले हमारे श्रोता हैं उनका अभिप्रेय भी है, उनका आशय है। एक बात मैं कह दूं कि मैं अभिप्रेय, आशय, इस तरह के जो शब्दों का कभी कभी इस्तेमाल कर लेता हूं, तो सच पूछे मैं जानबूझ करके भी ऐसे ऐसे शब्द लाता हूं ताकि आप लोग उससे भी तो परिचित हों। इसको लेकर के कई जो मेल मेरे पास आते हैं कि सर आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत किया कीजिए, हमारी समझ में नहीं आता है। मित्रों, आपकी शिकायत बिल्कुल जायज है, मैं सर माथे पर लेता हूं, लेकिन मेरे भी एक अनुरोध को थोड़ा सा स्वीकार कर लीजिए, नहीं आता है कोई अपराध नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है और तब भी आप उसे स्वीकार न करें तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा तो अपराध आप कर रहे हैं। आप डिक्शनरी उठाइए, किसी से पूछिए, आपके पास शब्दों का खजाना बढ़ेगा, तो एक अच्छी ही बात है ना। तो आप इसको इस रूप में भी देखिए, आप अपनी सुविधा असुविधा से चीजों का चयन क्यों करते हैं, कहीं असुविधा हो रही है तो उसे अपनी शक्ति बनाने की कोशिश कीजिए ना, क्योंकि शक्ति का जो विस्तार है, जो विकास है, जो वृद्धि है, वो तो असुविधाओं में ही होता है, सुविधाओं में कभी शक्ति वृद्धि नहीं करती है। तो दोस्तों, ये जो संस्कार है ये हमारे चित्त में बसा हुआ है, और यूं कह लीजिए, अगर मैं और सरल शब्दों में बताना चाहूं तो साइकोलॉजी के क्षेत्र में जिसे अब सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो कहीं नहीं कहीं या अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वहां संस्कार होते हैं। नो डाउट वैज्ञानिक तौर पर यह सिद्ध होता है कि जीन्स से काफी कुछ मिलते हैं, ये कहा जाता है कि जीन्स से काफी कुछ मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जीन्स ही प्रोमिनेंट होते हैं। आप देखिए कि एक पिता के बहु कुमारा भिन्न भिन्न रूप भिन्न आधारा, एक ही माता पिता के चार पुत्र हैं और चारों के संस्कार बिल्कुल अलग अलग है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को देख लीजिए, या पांचों पांडवों को देख लीजिए। तो इस तरीके से अगर वास्तव में जीन्स प्रोमिनेंट होते तो सभी के संस्कार भी बिल्कुल एक जैसे होते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। टू सम एक्सटेंट उसका रोल है, लेकिन वही प्रोमिनेंट नहीं है। लेकिन जो प्रोमिनेंट है मित्रों, वह है हमारा जो वातावरण है, सबसे पहला है पारिवारिक वातावरण, क्योंकि जो बच्चा है, बच्चे के पास लॉजिक माइंड नहीं होता है, और उसी समय संस्कारों का निर्माण होता है। संस्कार को आप विचार मत समझिएगा, विचार नहीं, विचार तो सोचा समझा सोची समझी चीज है, विचार तो बुद्धि से जुड़ी हुई चीज है, लेकिन संस्कार मन से जुड़ी हुई चीज है, चित्त से जुड़ी हुई चीज है, वो सार है। या यूं कह लीजिए कि जैसे संतरा है, तो संतरा की जो पैकिंग हुई है जिस तरीके से वो बुद्धि है, लेकिन संतरा का जो रस है, जो स्वाद है, जो सुगंध है, वो संस्कार है। मतलब एक ऐसी अद्भुत एक विचित्र सी चीज जो हमारे व्यवहार में कुछ इस तरीके से शामिल हो जाती है, घुल मिल जाती है कि हम उसी के हिसाब से आचरण करते हैं और हमें पता नहीं लगता। और कभी हम अगर उससे अलग आचरण कर भी बैठते हैं तो हमारे मन में एक अपराध बोध बैठ जाता है कि अरे हमने कुछ गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहूंगा, आज शायद मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाऊं, लेकिन चलिए। एक शंकर दयाल सिंह जी का अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, बिहार के बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर रहे हैं, बिहार के शंकर दयाल सिंह जी, पटना में वो रहते थे। मुझे उनका प्यार, हमारे परिवार को उनका प्यार पाने का बहुत ही अद्भुत सुयोग मिला, सौभाग्य मिला। हम लोग के बहुत अच्छे, बहुत उन्होंने वो प्यार देते थे, वो उनकी पत्नी और उनका पूरा परिवार। हम लोग जब राष्ट्रपति भवन में रह रहे थे उसी के कैंपस में, तो वो उस थोड़ी दूर पर ही गुरु रकाबगंज में उनको बहुत बड़ा बंगला मिला हुआ था, उस समय वो राज्यसभा के सदस्य थे। तो हम लोगों को कभी वो डिनर पर बुलाते थे तो दो दो तीन रात के दो दो ढाई ढाई बज जाते थे, क्योंकि वो नजदीक ही पड़ता था, डेढ़ दो किलोमीटर की दूरी होती थी तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनका बहुत बड़ा बंगला था और वो जब हम रात में, चाहे ठंड के दिन क्यों ना हो, दिल्ली की ठंड सोचिए, तो जब हम लोग आना उनका घर से निकलते थे तो याद ध्यान दीजिए कि वो और उनकी पत्नी घर से हमको बाहर तक छोड़ने आते थे। और उनका बहुत बड़ा लॉन था, फुटबॉल के ग्राउंड जितना लॉन था, उस बाहर के गेट तक आते थे छोड़ने। हम लोग मना करते करते रह जाते थे कि भाई साहब बहुत ठंड है, रहने दीजिए, भाभी जी रहने दीजिए, लेकिन वो नहीं मानते थे। दोस्तों कुछ सालों की बात है, साल भर तो हो ही गए होंगे, उनके बेटे हैं रंजन प्रताप सिंह, रंजन कुमार सिंह। जब मैं उनके यहां गया तो वो फोर्थ फ्लोर पर रह रहे थे, गुलमोहर कॉलोनी के पास, दिल्ली की गुलमोहर कॉलोनी है, वहां फोर्थ फ्लोर पर फ्लैट में रहते हैं वो। मैं जब गया और जब मैं वापस आने लगा, मैं और मेरी पत्नी वापस आने लगे, तो हम लोगों ने उनको मना किया, क्योंकि लिफ्ट नहीं थी, उसमें चढ़ना उतरना ही पड़ता था। तो हम लोगों ने उनको मना किया कि नहीं निरंजन जी, आप रहने दीजिए, आप नीचे बिल्कुल नहीं जाएंगे। वो नहीं माने, मैं जिद करने लगा, वो भी जिद करने लगे, लेकिन उन्होंने क्या कह के मुझे चुप कराया मालूम है कि विजय जी, ये हमारे संस्कार नहीं है, ये हमारे संस्कार नहीं है। मैं चुप हो गया और वो नीचे तक हमें छोड़ने आए। तो मित्रों, इससे अगर आपको संस्कार का कुछ स्वरूप पता लग गया होगा तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए, और इस पर मैं आगे कल फिर इसको कंटिन्यू बात करना चाहूंगा। तो मित्रों, इसी के साथ ही आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को अब यहीं समाप्त करने की मैं इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।